नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आज शाम संपन्न हो गया। एकजुटता, समानता और स्थिरता विषय पर दो दिन के ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी को वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित, राष्ट्रीय के बजाय वैश्विक और विशिष्ट मॉडलों के बजाय ओपन सोर्स पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास, विश्वसनीय व्यापार, निष्पक्ष वित्त और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने वाली प्रगति के महत्व पर बल दिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, नवाचार, AI, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मेलोनी ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की इटली की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आने वाले महीनों में द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इब्सा केवल तीन देशों का समूह नहीं है, बल्कि तीन महाद्वीपों, तीन प्रमुख लोकतंत्रों और तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि तीनों देश सतत विकास के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में अभूतपूर्व गति से मादक पदार्थ तस्करों के गिरोह को ध्वस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की टीम ने नई दिल्ली में हाल में 262 करोड़ रुपए का 328 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली में मेथामफेटामाइन की पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज आंध्र प्रदेश के पलासमुद्रम स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में सिविल सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने युवा अधिकारियों से टीम की उत्कृष्टता को व्यक्तिगत उपलब्धि से ऊपर रखने और निरंतर सीखने तथा सुधार की मानसिकता विकसित करने का आग्रह किया। सरकार द्वारा पुराने और जटिल श्रम कानूनों के स्थान पर चार सरल और व्यापक लेबर कोड लागू करने के फैसले को देश भर के श्रमिक समुदाय से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आकाशवाणी से बातचीत में मजदूरों ने अपनी खुशी साझा की।
मैं देशराज गैस प्लांट हाउलेज कंट्रेक्टर वर्कर में काम करता हूं। आज हमें हमारे देश में पता चला है कि चार कानून लागू हुए हैं, उसके लिए हमारा जीवन बहुत ही आसान ते बेहतर ते हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी कल जम्मू में औपचारिक रूप से शुरू होगी। इसका नेतृत्व कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। खान मंत्रालय ने कहा है कि ये केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत भागीदारी और क्षेत्र के लिए इस पहल के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। कोलंबो में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। नेपाल के 115 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 117 रन बनाकर शानदार तरीके से खिताब अपने नाम किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। KL राहुल को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। शुभमन गिल चोटिल होने के कारण एक दिवसीय श्रृंखला में नहीं खेलेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए हैं। KL राहुल 2 रन और जायसवाल 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।